शांति। सर्व के प्रति शुभ भावना रखना एक महान गुण है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे जीव जंतु हो। सबके प्रति शुभ भावना रखना यह एक बड़ी अहिंसा है। तो इस महान गुण के आधार पर हम इस संसार का परिवर्तन कर सकते हैं। शुभ भावना के लिए शुभ चिंतक बनने की आवश्यकता है, हर एक के प्रति शुभ चिंतक। और जैसे जैसे हम सबके प्रति शुभ चिंतक बनते जाएंगे तो शुभ भावना सहज जागृत होती जाएगी। और शुभ चिंतक बनने के लिए शुभ चिंतन चाहिए। तो शुभ चिंतन द्वारा शुभ चिंतक बनते हैं और शुभ चिंतक के आधार से शुभ भावना या शुभ कामना मन में सबके प्रति उत्पन्न होती है। शुभ चिंतन अर्थात आत्मा के श्रेष्ठ गुणों का चिंतन, चाहे वह स्वयं की आत्मा के गुणों का चिंतन हो, चाहे दूसरों की आत्मा के गुणों का चिंतन हो। लेकिन शुभ चिंतन का अर्थ ही है आत्मा के गुणों का चिंतन। अगर हम अपनी आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं तो यह स्वमान का अनुभव कराएगा, और अन्य की आत्माओं के चिंतन में हम मग्न रहते हैं तो इससे हमारे मन में अन्य के प्रति सम्मान पैदा होगा। तो शुभ चिंतन करने से स्वमान आता है तो साथ साथ सम्मान भी सर्व के प्रति पैदा होता है। और जैसे जैसे स्वयं के लिए शुभ चिंतन और अन्य के लिए शुभ चिंतन करेंगे, वैसे वैसे हमारी दृष्टि भी शुद्ध होती जाएगी। जैसी जैसी दृष्टि शुद्ध होती जाएगी वैसी वैसी हमारी स्थिति भी शुद्ध होती जाएगी। हम अपने मन से श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, प्रकंपन वातावरण में फैला सकेंगे और फलस्वरूप इस सृष्टि का हम परिवर्तन कर सकेंगे। तो अगर हम इस संसार को सुखमय बनाना चाहते हैं तो हम अपनी भावना, अपनी दृष्टि, अपना चिंतन परिवर्तन करें। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में टकराव का मूल कारण ही है प्रीत के बजाय विपरीत भावना या शुभ भावना के बजाय अशुभ भावना एक दो के प्रति पैदा होना। और जैसी भावना होती है वैसा ही भाव बनता है। ईर्ष्या की भावना होगी तो जिसके प्रति ईर्ष्या होगी उस व्यक्ति की हर चलन और बोल का गलत भाव ही प्रकट होगा। अगर उसका बोल अच्छा भी होगा तो भी उसकी अच्छाई में मुझे बुराई ही दिखाई देगी, क्योंकि ईर्ष्या का भाव है। चाहे उसकी चलन भी कितनी अच्छी क्यों नहीं होगी तो भी मुझे उसमें बुराई ही नजर आएगी, क्योंकि भाव मेरा बुरा है तो भावना भी बुरी बन जाती है, और भावना बुरी बनने के कारण दृष्टि भी वैसे ही बन जाती है। तो अगर हम इस समाज का परिवर्तन चाहते हैं तो पहले हमें अपनी दृष्टि, भावना और भाव का परिवर्तन करना होगा। शुभ भावना की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है स्नेह की कमी। अगर किसी व्यक्ति से मेरा सच्चा स्नेह है तो उसकी बुरी बातें भी मुझे अच्छी लगेगी। अच्छी बातें तो अच्छी लगेगी, लेकिन चाहे उसकी बुरी बात भी क्यों ना हो, वो भी मन को दुख नहीं देगी, वह भी अच्छी ही लगेगी, क्योंकि अंदर में उसके प्रति स्नेह है। और जब किसी से हमारा स्नेह समाप्त हो जाता है तो अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है। जो पहले स्नेह था तो वही बात अच्छी लगती थी, लेकिन जब स्नेह खत्म हो जाता है तो वह जो पहले अच्छी लगती थी बात, वही बुरी लगने लगती है। कारण ही है कि शुभ भावना का अभाव है। कई बार हम किसी की पास्ट की बुरी बातों को सोच करके उनके प्रति बुरी भावना रखते हैं, और मन में ऐसे लगता है जैसे कि यह व्यक्ति सदा ही बुरा है, तो भूत की बातों के आधार पर वो मुझे बुरा लगता है। चाहे वह अभी कितना भी अच्छा क्यों नहीं बन गया हो, लेकिन मैंने अपने उसके प्रति भावना नहीं बदली। चाहे व्यक्ति बदल गया, पर मेरी भावना अगर नहीं बदली तो वह अच्छा व्यक्ति भी मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी किसी द्वारा हमें किसी व्यक्ति की बुरी बात मिलती भी है, और फलस्वरूप हम उस बुरे व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखते हैं। अब हो सकता है जिसने मुझे उसकी बुरी बात कही उसकी उनके साथ ईर्ष्या हो, पर मेरी तो ईर्ष्या नहीं है, लेकिन उसकी बात मैंने मान ली और उसी को स्वीकार कर लिया, तो हो सकता है कि मेरी दृष्टि भी उसके लिए बुरी हो जाए। तो कभी हम पास्ट के आधार पर बुरी भावना रखते हैं, कभी वर्तमान प्रेजेंट के आधार पर बुरी भावना रखते हैं, तो कभी कभी भविष्य के आधार पर भी हम बुरी भावना रखते हैं। कई लोगों के लिए हमारे मन में एक भावना बन जाती है कि ये व्यक्ति तो कभी नहीं सुधरेगा, हालांकि वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर में उसके प्रति सदा यही भावना रहती है कि ये कभी नहीं सुधरेगा। तो मानो कि हमारी भावना उसके प्रति अशुभ रही तो फलस्वरूप वो शायद न भी सुधरे। लेकिन शुभ भावना का अर्थ है सदा उसके गुणों को देखना, उसके गुणों को ही याद करना, उसके गुणों का ही सोच मन में चलाना, ये है शुभ भावना रखना। और शुभ कामना रखना अर्थात उसका भविष्य भी उज्जवल हो, ये कामना करना। जैसे हम किसी के लिए कामना करते हैं कि आप सदा खुश रहो, सदा संतुष्ट रहो, सदा सुखी रहो, ये शुभ कामना है। लेकिन शुभ कामना हमारी तब कार्यान्वित होगी जब पहले उसके लिए शुभ भावना होगी। शुभ भावना के आधार पर दिल से हम शुभ कामना दे सकेंगे और वह शुभ कामना फलीभूत भी होंगी। किसी के प्रति शुभ भावना रखना और उसके प्रति शुभ कामना करना वास्तव में ये बहुत बड़ा पुण्य है। जैसे हम किसी को स्थूल दान करते हैं वह पुण्य बन जाता है। जिस समय जिसको कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है और हम उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो समझो उसके दिल से हमारे प्रति दुआ निकलती है, तो वह हमारा पुण्य बन जाता है। तो जैसे किसी को स्थूल वस्तु देने से पुण्य बनता है, वैसे ही शुभ भावना और शुभ कामना प्रकट करने से भी पुण्य बनता है, क्योंकि ये दोनों दिल से निकलते हैं। अगर केवल मुख से शुभ भावना या शुभ कामना रखी तो शायद दूसरे व्यक्ति पर उसका असर न भी पड़े, वह शुभ कामना काम न भी करे। कई लोग आजकल दिखावे की भी शुभ कामना करते हैं, किसी का जन्मदिन हुआ, किसी की शादी हुई, किसी ने कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की, तो हम उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देने जाते हैं, हम उसके प्रति शुभ कामनाएं प्रकट करते हैं, लेकिन शायद दिल की दुआएं नहीं देते हैं। तो फलस्वरूप वो चाहे व्यवहार में शुभ कामना लगती है, पर सच्चे दिल से न होने के कारण वह कभी भी दूसरे को भी महसूस नहीं होती है। और आज की दुनिया में इसी को ही फॉर्मैलिटी कहते हैं। मुख से केवल शुभ भावना प्रकट करते हैं या शुभ कामनाएं देते हैं, पर यह सच्ची दिल से होनी चाहिए और अंदर में यह महसूस होना चाहिए कि शुभ कामना करना या शुभ भावना देना ये उस व्यक्ति का उपकार करना है। और उपकार वही कर सकता है जिसमें हिम्मत हो, जो उदार दिल हो, जिसके अंदर रहम की भावना हो, जिसमें क्षमा का गुण हो। अगर क्षमा का गुण नहीं, रहम की भावना नहीं, उदार दिल नहीं, हिम्मत नहीं, तो शुभ भावना भी नहीं दे सकेंगे और शुभ कामना भी हम प्रकट नहीं कर सकेंगे। हमारी शुभ कामना तो ऐसी हो जो केवल सामने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त न हो, परंतु वो व्यक्ति चाहे हजारों मील दूरी पर क्यों न हो, पर हमारी शुभ भावना और शुभ कामना उस तक पहुंच सकती है, जिसको हम कहते हैं मन के द्वारा सेवा। आज हम वाणी से केवल किसको शुभ भावना प्रकट करते हैं, या हम एक ग्रीटिंग कार्ड किसको भेज देते हैं और हमारी गुड विशेस प्रकट करते हैं, लेकिन ये बाहर की फॉर्मेलिटीज न भी हो, पर मन में शुभ कामना और शुभ भावना हम अगर रखते हैं किसी के प्रति, तो वह व्यक्ति चाहे हजारों मील की दूरी पर क्यों न हो, उसको वो अनुभव होता है। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार हम राजयोग के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन इतना स्वच्छ हो जाता है, इतना निर्मल और शुद्ध हो जाता है कि जिस प्रकार आज ऊर्जा की शक्ति या स्थूल शक्ति भी कहां से कहां पहुंच जाती है, वैसे मन की शक्ति भी कहां से कहां पहुंच सकती है। आज विज्ञान के साधनों के माध्यम से दूर बैठे हम उस दूर के दृश्य को नजदीक में अनुभव करते हैं। दूर बैठे किसी व्यक्ति से संचार माध्यम के द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं। दूर बैठे किसी व्यक्ति को हम अपने भाव पत्र द्वारा एक सेकंड में पहुंचा सकते हैं। तो जिस प्रकार ये विज्ञान के साधन इतना सहज उपलब्ध होने के कारण सहज ही हम प्राप्ति करा सकते हैं, इसी प्रकार मन के भाव भी हम किसी व्यक्ति को दूर बैठे भी एक सेकंड में अनुभव करा सकते हैं। परंतु उसके लिए चाहिए दिल की शुभ भावना, दिल की शुभ कामना। दूर बैठे किसी ना उम्मीद व्यक्ति में भी हम उम्मीद भर सकते हैं। किसी अशांत व्यक्ति को हम शांति का दान दे सकते हैं। यह चमत्कार हम शुभ भावना के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए सच्ची दिल की शुभ भावना और शुभ कामना। उसके लिए मन के विचार अति शुद्ध चाहिए। और जब शुद्ध विचार हम मन में उत्पन्न करेंगे तो हमारे संकल्प एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में उस आत्मा तक भी पहुंचेंगे और फलस्वरूप उस ना उम्मीद में भी उम्मीद आ जाएगी। अशक्त आत्मा में शक्ति की जागृति हो जाएगी। वो ऐसा अनुभव करेगा कि कोई उसे दूर बैठे शक्ति का दान कर रहा है। ये है शुभ भावना और शुभ कामना की कमाल। जैसे पत्थर पर पानी पड़ते पड़ते पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है, शालिग्राम बन जाता है, पूजा के योग्य बन जाता है, या हम कह सकते हैं एक शिला, एक पत्थर, उस पर भी पानी पड़ते पड़ते वो मूर्ति बन जाता है, शील बन जाता है। तो शिला भी शील बन जाता है। किस आधार पर? शुभ भावना और शुभ कामना के जल के माध्यम से। ये है चमत्कार शुभ भावना का। किसी दुश्मन को भी हम सच्चा मित्र बना सकते हैं शुभ भावना और शुभ कामना के माध्यम से। हम किसी व्यक्ति के प्रति कभी भी सदा यह संकल्प न करें कि ये मनुष्य मेरे लिए बुरा ही सोच रहा है, ये तो मेरा दुश्मन है। चाहे वो मेरे लिए कितना भी बुरा क्यों नहीं सोचता हो, पर मैं अगर उसके लिए अच्छा सोचूंगी तो अवश्य एक दिन आएगा जब वह व्यक्ति भी मेरे लिए अच्छा सोचने लगेगा। परंतु उसके लिए धीरज की बड़ी आवश्यकता है। अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा सोचे तो पहले हमें उसके लिए अच्छा सोचना होगा। और अच्छा सोचना औरों के लिए का अर्थ है शुभ भावना रखना और उसके लिए शुभ कामना करना। शुभ भावना ये वर्तमान की स्थिति हो गई और शुभ कामना ये भविष्य की स्थिति हो गई। तो उसके लिए वर्तमान भी श्रेष्ठ सोचना और उसका भविष्य भी श्रेष्ठ सोचना, अर्थात दोनों प्रकार की भावना जागृत करना, उसके वर्तमान के लिए भी तो उसके भविष्य के लिए भी। तो अगर हम किसी व्यक्ति का परिवर्तन करना चाहते हैं, दुश्मन को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, कठोर दिल को पिघलाना चाहते हैं, तो हमको शुभ भावना और शुभ कामना देने की आवश्यकता है। वरना दुनिया की कोई शक्ति उसको परिवर्तन नहीं करेगी। केवल अच्छे बोल से या महिमा करने से ही वो व्यक्ति परिवर्तित नहीं होगा, जब तक हमारे मन में उसके प्रति भाव नहीं बदलेंगे। कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य दूसरे से डर के मारे वो अच्छा व्यवहार करने लगता है, सोचता है कि अगर मैं इसके साथ बुरा व्यवहार करूंगा तो ये व्यक्ति तो मेरे से भी बुरा है, मैं शेर हूं तो ये सवा शेर है, ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, इसीलिए इसके साथ तो अच्छा व्यवहार करना ही ठीक है, नहीं तो मेरा ही नुकसान होगा। जैसे कोई मिट्टी का टुकड़ा हो और वो सोचे मैं पत्थर से टकराऊं और पत्थर को मैं तोड़ूं, ये मिट्टी के टुकड़े का भ्रम है, क्योंकि मिट्टी का टुकड़ा टूट जाएगा, पत्थर का टुकड़ा नहीं। तो मिट्टी के टुकड़े को यह सोचना चाहिए कि ये अधिक शक्तिशाली है तो मुझे उसके साथ ठीक व्यवहार ही करना उचित होगा। तो ये तो एक भावना है जरूर, लेकिन इनसे भी ऊंची भावना है कि हम उनसे अच्छा व्यवहार डर के मारे ना करें कि अगर हम इनसे बुरा व्यवहार करेगा तो मैं शेर होऊंगा तो ये सवा शेर बन जाएगा, इसीलिए मुझे अच्छा व्यवहार करना चाहिए वरना मेरा ही नुकसान होगा। इस सोच से शुभ भावना शुभ कामना जागृत नहीं होगी। लेकिन अंतर में मन में इतनी शक्ति आ जाए कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, इस आत्मा का भी उपकार हो, इस आत्मा को भी सच्ची शांति का अनुभव हो, इस आत्मा को भी सच्ची खुशी मिले, ये है मन में शुभ कामना प्रकट करना। इस आत्मा का उद्धार हो, ये आत्मा भी प्रभु मिलन का अनुभव करे, ये आत्मा भी जीवन में एक सच्चे आनंद की अनुभूति करे, तो ये भावना और कामना हमारे मन को भी श्रेष्ठ बनाएगी और ये वाइब्रेशन उस दुश्मन को भी हमारा मित्र बनाएगी। तो दुश्मन से दुश्मनी करना ये कोई समझदारी नहीं, पर दुश्मन को मीत बनाने के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखना अति जरूरी है। क्योंकि हम सदा सोचे चाहे वो व्यक्ति मेरा दुश्मन कितना भी क्यों नहीं है, परंतु आखिर तो वह भी एक आत्मा है। तो अगर पत्थर पिघल सकता है तो आत्मा क्यों नहीं पिघल सकती है? अवश्य मेरे शुभ भावना या कामना की कमी है, इसीलिए वह पिघलता नहीं है। तो जितना वो हमारे से दुश्मनी रखे, उतना ही मैं उसको सच्ची दिल का स्नेह दूं। तो जैसे जैसे सच्ची दिल का स्नेह देती जाऊंगी, वैसे वैसे उसका मन अवश्य पिघलता जाएगा। और हमने देखे हैं अपने जीवन काल में कि दो व्यक्ति एक दो के कट्टर दुश्मन, लेकिन कैसे वे एकदम से मित्र बन जाते हैं, एकदम चमत्कार हो जाता है। हम सोचते ही रह जाते हैं कि ये दोनों एक दो का मुख भी नहीं देखना चाहते थे, बात भी नहीं करना चाहते थे, सोचना भी नहीं चाहते थे, और आज ये इतने अच्छे मित्र कैसे बन गए? कौन सी चीज ने चमत्कार किया जो दुश्मन सच्चे मित्र बन गए? इसका एक स्वरूप है शुभ भावना और शुभ कामना। ये मन की स्थिति इतनी ऊंची स्थिति है जो बड़ा सुंदर चमत्कार कर सकती है। जिसको हम असंभव समझते थे वो संभव हो जाता है। दुनिया में देशों के बीच समस्याएं, एक देश दूसरे देश का दुश्मन बन जाता है। एक सोचता है कि मैं उसको नष्ट करूं और दूसरा सोचता है मैं उसको नष्ट करूं। क्या हम एक दो को नष्ट करके संसार को ही नष्ट करना चाहते हैं? नहीं। कहा जाता है जियो और जीने दो, खुद भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी करो। तो उसके लिए शुभ भावना और शुभ कामना सबके लिए रखो। हो सकता है आपके मन में किसके प्रति बहुत अच्छी भावना हो, पर दूसरे व्यक्ति के अंदर आपके प्रति बुरी भावना हो, तो भी घबराओ मत। पहले हम अपने आप को देखें कि मेरी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी भावना अगर अच्छी है तो हमारा मन कभी नहीं खाएगा। हाँ, मेरी भावना ही बुरी होगी और हम चाहेंगे कि दूसरा व्यक्ति मेरे से अच्छा व्यवहार करे, मेरे प्रति अच्छी भावना रखे, और मेरी दुश्मनी इसीलिए है क्योंकि वो मेरे प्रति बुरी भावना रखता है, तो इसमें वास्तव में मेरा ही दोष है। परंतु अगर मेरी भावना बहुत अच्छी है, मेरा उसके लिए अत्यंत स्नेह है, लेकिन उसका मेरे प्रति अशुभ भाव है या मेरे लिए अशुभ भावना है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अंतर में अपने विचारों का परिवर्तन करके हम शुभ भावना का जल देते जाएं। हमें उसकी निस्वार्थ सेवा सदा करते रहनी चाहिए। हम ये नहीं सोचें कि वो हमारी सेवा नहीं करता तो मैं क्यों उसकी सेवा करूं, परंतु मुझे निस्वार्थ सेवा करते रहना है, मुझे सबको सुख देने का लक्ष्य रखना है। मेरे मुख से कभी भी कड़वा वचन न निकले, चाहे उसके अंदर में मेरे प्रति अशुभ भावना कितनी भी हो, परंतु मेरा वचन मधुर हो, मेरी भावना श्रेष्ठ हो, शुभ हो, तो हम सदा दूसरों के शुभ भावना और शुभ कामना के भी अधिकारी सहज बन जाएंगे। इसीलिए अभी शिकायत करना बंद करो, शिकवा करना भी बंद करो, उसके बजाय सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करो। मन में सोचो कि सब सुखी रहे, भगवान ने सबको सुखी रहने का अधिकार दिया है। जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूँ, वैसे सभी सुखी रहे। तो जहाँ सबके प्रति इस प्रकार की शुभ भावना शुभ कामना होगी, तो हम तो सुखी रहेंगे ही। परंतु हम सोचें कि हम खुद को सुखी बनाएं और दूसरों को दुखी बनाएं, तो हम भी सुखी नहीं रह सकेंगे। ये सदा अपने मन में निश्चित कर लो। तो अगर हम शुभ भावना और शुभ कामना मन में हर एक के प्रति व्यक्त करेंगे, तो चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह जीव जंतु क्यों न हो, चाहे पक्षी हो, जानवर हो, प्रकृति का एक सुंदर स्वरूप हो, उसके लिए भी शुभ भावना रखें, तो सबसे हमें सुख मिलेगा। केवल व्यक्तियों के प्रति ही शुभ भावना नहीं, पशु पक्षियों के प्रति भी शुभ भावना हो, प्रकृति के प्रति भी शुभ भावना हो। अर्थात हम प्रकृति के लिए भी यही सोचें कि यह प्रकृति अति सुंदर है, परमात्मा की सुंदर रचना है, तो उसके लिए भी श्रेष्ठ चिंतन करके प्रकृति में भी शुद्ध प्रकंपन फैलाएं, तो यह संसार तो सुखरूप होगा ही, लेकिन प्रकृति भी साथ साथ सुखरूप बन हमें सच्चा सुख देगी। ओम शांति।